श्रीमद् भागवतम आठवां स्कंद बारहवां अध्याय के आठवें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। एकस्त्वमेव सत् असत् द्वयम् अद्वयम् च स्वर्णम् कृताकृतम् एवेह नाम वस्तु भेदः अज्ञानतस्त्वयि जनयतो विकल्पो यस्मात् पुं व्यतिकरो निरुपाधि कश्च। इसका अनुवाद का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के मन श्रील प्रभुपाद की हे प्रभु, आप अकेले ही कार्य भी हैं तथा कारण भी हैं, अतः आप दो प्रतीत होते हुए भी परम पूर्ण एक हैं। जिस तरह आभूषण के सोने तथा खाद के सोने में कोई अंतर नहीं होगा, उसी तरह कारण तथा कार्य में अंतर नहीं होता, दोनों ही एक है। अज्ञान के कारण ही लोग अंतर तथा द्वैत गढ़ते हैं। आप भौतिक कर्म से मुक्त हैं और चूंकि संपूर्ण ब्रह्मांड आपके द्वारा उत्पन्न है और आपके बिना बुद्धिमान नहीं रह सकता, अतः भी आपके दिव्य गुणों का प्रभाव है। इस प्रकार इस अवधारणा को माना नहीं जा सकता कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि सारे जीव भगवान की तदस्थता शक्ति के स्वरूप है और जीवों द्वारा अपनाए गए विभिन्न शरीर भौतिक शक्ति के परिणाम है। इस प्रकार शरीर भौतिक और आत्मा आध्यात्मिक माना जाता है, तथापि इन दोनों का उद्गम एक ही भगवान है। जैसा कि भगवान भगवद गीता में 7, 4 और 5 में बताते हैं, भूमि रापो अंधो वायु कम मनोबुद्धि लेचा अहंकारम तियमे बिना प्रकृति अष्टधा अपरेयम तिस्पन्याम प्रकृति निधि में पराम जीव भूता महाभावो ये एकदम धारेते चकर। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार ये आठों मिलकर मेरे भिन्न भौतिक शक्तियां बनाते हैं, किंतु हे महाबली अर्जुन, इस कनिष्ठ प्रकृति के अतिरिक्त मेरी एक श्रेष्ठ शक्ति है जो भौतिक प्रकृति से संघर्ष करने वाले तथा ब्रह्मांड को धारण करने वाले सभी जीवों से बनती है। इस प्रकार पदार्थ तथा जीव दोनों भगवान की शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। चूंकि शक्ति तथा शक्तिमान पृथक पृथक नहीं है और चूंकि भौतिक तथा प्रदर्शिता दोनों शक्तियां परम शक्तिमान भगवान की शक्तियां हैं, अतः अंततः भगवान ही सर्वेसर्वा है। इस प्रसंग में सोने का उदाहरण दिया जा सकता है, एक जो सांचे में ढाला नहीं गया और दूसरा जो सांचे में ढाला जाकर विभिन्न आभूषणों में परिणत कर दिया गया है। सोने का चंदन तथा खान से निकला सोना केवल कार्य कारण रूप में भिन्न है, अन्यथा वे एक है। वेदांत सूत्र में वर्णन हुआ है कि ब्रह्म हरेक वस्तु का कारण है। जन्मार्यस्य यतः प्रत्येक वस्तु पर ब्रह्म से उत्पन्न होती है, प्रत्येक वस्तु भिन्न भिन्न शक्तियों के रूप में उनसे उद्भूत होती है, इसलिए इनमें से किसी भी शक्ति को मिथ्या नहीं मानना चाहिए। मायावादी द्वारा ब्रह्म तथा माया में अंतर करना मात्र उनके अज्ञान के कारण है। भागवत चंद्र चंद्रिका में श्रीमद् वीर राघव आचार्य ने रचना दर्शन का वर्णन इस प्रकार दिया है, दृश्य जगत को सत तथा असत और चित तथा अचित बनाया गया है। पदार्थ अचित है और जीव चित है, लेकिन उनका उद्गम भगवान है, जिनमें पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। इस दृष्टि से पदार्थ तथा आत्मा से युक्त यह दृश्य जगत भगवान से भिन्न नहीं है। इतम ही विश्वम भगवान इतरा यह दृश्य जगत भी भगवान है, यद्यपि यह उनसे भिन्न प्रतीत होता है। भगवद गीता 9:4 में भगवान कहते हैं, मया कृतम इदम सर्वम जगत अव्यक्तबोधिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। यह विश्व मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है, सारे जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। अतः यद्यपि कोई ये कह सकता है कि भगवान इस दृश्य जगत से भिन्न है, किंतु वास्तव में वे भिन्न नहीं है। भगवान कहते हैं, मया कृतम इदम सर्वम, मैं अपने निराकार रूप में विश्व भर में फैला हुआ हूँ, अतः वे विश्व उनसे भिन्न नहीं, अंतर केवल नामों का है। उदाहरणार्थ चाहे हम सोने के कुंडल की, कंगन की या हार की बात करें, अंत तो कृपा ये सब सोना है। उसी प्रकार पदार्थ तथा आत्मा के विविध स्वरूप भगवान में अंततः एक ही है। एकम एवा द्वितीयम ब्रह्मा, यह वैदिक उक्ति है छांदोग्य उपनिषद 6.1। एकत्व का कारण यह है कि सभी वस्तुएं परम ब्रह्म से उद्भूत हैं। पहले दिए गए उदाहरण के अनुसार सोने के कुंडल तथा सोने की खान में कोई अंतर नहीं है, केवल वैशेषिक चिंतक अपनी मायावादी विचारधारा के कारण अंतर उत्पन्न करते हैं। वे कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, परम सत्य वास्तविक है और दृश्य जगत मिथ्या है। किंतु जगत को मिथ्या क्यों माना जाए, जगत तो ब्रह्म का तेज है, अतः जगत भी सत्य है। अतः वैष्णव जन जगत को मिथ्या नहीं मानते। वे परमेश्वर से संबंधित होने के कारण हर वस्तु को सत्य मानते हैं। अनासक्ति से विषयान यथारहम पूर्णतः निर्बंधः कृष्ण संबंधी युक्तम वैराग्यम उच्यते प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम प्रभु कथ्यते। वस्तुएं भगवान की सेवा के लिए स्वीकार की जानी चाहिए, ना कि निजी तृप्ति के लिए। यदि कोई अनासक्त भाव से तथा कृष्ण से संबंधित होने के कारण कोई वस्तु स्वीकार करता है तो उसका त्याग युक्तम वैराग्यम कहलाता है। वस्तु स्वीकार करने हैं तो उसे त्याग कहलाता है। भगवान की सेवा करने में जो भी अनुकूल हो उसे स्वीकार करना चाहिए, उसे भौतिक वस्तु समझकर ठुकराना नहीं चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.255-256। जगत को मिथ्या समझकर त्यागना नहीं चाहिए। यह जगत सत्य है और सत्य की अनुभूति तब होती है जब प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है। यदि हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी फूल को स्वीकार करते हैं तो वह भौतिक होता है, किंतु जब भक्त उसी फूल को भगवान को चढ़ाता है तो वह आध्यात्मिक हो जाता है। अपने लिए लिया गया और पकाया गया भोजन भौतिक है, किंतु भगवान के लिए पकाया गया भोजन आध्यात्मिक प्रसाद है। यह अनुभूति का प्रश्न है। वास्तव में हर वस्तु के देने वाले भगवान हैं, अतः हर वस्तु आध्यात्मिक है। किंतु जो लोग वास्तविक ज्ञान में उन्नत नहीं है, वे प्रकृति के तीन गुणों की पारस्परिक क्रिया के कारण वस्तु वस्तु में भेद मानते हैं। इस प्रसंग में श्री जी गोस्वामी कहते हैं, यदि सूर्य ही एकमात्र प्रकाश है किंतु सात रंगों में दिखने वाला प्रकाश और अंधकार जो सूर्य का अभाव है, वे दोनों सूर्य से भिन्न नहीं है, क्योंकि सूर्य के अस्तित्व के बिना ऐसा अंतर नहीं रह सकता। भले ही विभिन्न दशाओं के कारण उनके विविध नाम हो, किंतु वे सब सूर्य है। अतः पुराणों का कथन है, एक देश स्थित ज्योत्सना विस्तार नहीं था, परस्य ब्रह्मणा शक्ति सतेदम अखिलम जगत। जिस प्रकार अग्नि का प्रकाश अग्नि के एक स्थान पर रहते हुए चारों में फैलता है, उसी प्रकार पर ब्रह्म की शक्ति सारे ब्रह्मांड में फैली हुई है। विष्णु पुराण 1:22-43। भौतिक दृष्टि से हम सूर्य प्रकाश को विभिन्न नामों तथा कार्यों के अनुसार फैलते अनुभव कर सकते हैं, किंतु अंततः सूर्य एक है। इसी प्रकार सर्वम खल्विदं ब्रह्मा, प्रत्येक वस्तु परम ब्रह्म का विस्तार अंश है। अतः पर ब्रह्म सर्वस्व है और वे भेद रहित है। भगवान से पृथक किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। श्री गुरु श्री अच्छा निकलने लगेगा। श्री राधा कृष्ण पादा सरण लगेगा श्री विशाखा निकाश। हे कृष्ण करुणा सिंधु देख बंधो जगत पदे गोपेश गोपिका कांत राधा तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वारूप सुदेवी प्रणामी श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रीअद्वैतनाथ श्वास हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण कृष्ण भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामनि सरस्वती देवी और वाणी के चार्ज ने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य के शुक्रवार हरे कृष्ण। तो मोहिनी मूर्ति का प्रसंग चल रहा है। हम सबने देखा कि किस प्रकार सुर और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और ये समुद्र मंथन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अमृत की खोज को दर्शाता है। पूरा संसार अमर होना चाहता है और ये बहुत ही प्राचीन कथा है और ये लोगों को ये शिक्षा दे रहा है कि अमृत की प्राप्ति कैसे की जा सकती है। तो आप देखेंगे विश्व के अनेक स्थानों पर जो प्राचीन मंदिर है वहां पर समुद्र मंथन के चित्रण किया है। जैसे इंडोनेशिया में भी बहुत प्राचीन मंदिर है वहां पर भी समुद्र मंथन का जो चित्र है बना हुआ तो बहुत ही प्राचीन है। सो समुद्र मंथन किया सूर्य और शुक्र दोनों ने मिलकर अमृतों की खोज में, लेकिन असुर जो है अंत में भगवान की बहिरंगा शक्ति मोहिनी मूर्ति से आकर्षित हो गए और जो उनका लक्ष्य था अमृत उसको वो लोग भूल गए, उसका तिरस्कार कर दिया, अवहेलन कर और भगवान की उस मोहिनी मूर्ति ने सारा जो अमृत था वो देवताओं ने बांट दिया। सो लोग अमृत की खोज में तो है लेकिन भगवान की बहिरंगा शक्ति से आकर्षित होकर भूल जाते हैं कि अमृत को कैसे प्राप्त किया जा सके। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है पीछे क्या? थोड़ा गला खराब है इसलिए मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा। सो जो असुर है उन्होंने बहुत प्रयास किया कि अमर हो जाए लेकिन बहिरंगा शक्ति के पास में फंस कर वो अमृत को भूल गए, अमृत के प्रति उदासीन हो गए। तो पूरा भौतिक संसार इसमें एक एक जीव अमृत प्राप्त कर सकता है बशर्ते वो भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्रति उदासीन हो और भगवान की जो विमुखता है उसको छोड़कर भगवान के सम्मुख हो, भगवान के प्रति अपनी रुचि को वापस जागृत करें। सो जब शिव जी को पता चला कि भगवान ने मोहिनी रूप दिखाया है तो शिव जी जो है वो भगवान के मोहिनी रूप के दर्शन की इच्छा से भगवान मधुसूदन के पास गए और भगवान के पास पहुँच के उन्होंने भगवान को अनेक प्रार्थनाएं बोली। तो हम कुछ समय इस विषय पर बात करेंगे कि शिव जी जो है वो भगवान के पास गए और प्रार्थना कहें, उसके बाद हम इस श्लोक पर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो शिव जी भगवान के पास गए और प्रार्थना की ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप भागवत इत्यादि ग्रंथों में देखें जब भी कोई भक्त भगवान के सम्मुख जाता है या कोई भक्त किसी वरिष्ठ वैष्णव या गुरु के सामने जाता है तो पहले गुरु की या भगवान की प्रशंसा करते हैं। की प्रशंसा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भगवान की प्रशंसा करना ये दिखाता है कि भगवान एक व्यक्ति है। निराकार की प्रशंसा करके कुछ हासिल नहीं होगा, है ना। जो निराकार सर्वव्यापी उसकी क्या प्रशंसा कर सकते हैं। लेकिन जब भक्त भगवान की प्रशंसा करता है, भगवान का गुणगान करता है, भगवान की स्तुति करता है, तो इससे वो ये दर्शाता है कि मैं ये मानता हूँ कि हे भगवान, आप एक व्यक्ति हो और आप परम दयालु हो और इन स्तुतियों को आप बहुत ही करुणावश स्वीकार करोगे और मुझ पर दया करोगे। तो ये बताता है कि हम भगवान के सकार रूप में विश्वास रखते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम भगवान के साथ में या गुरु के साथ में किसी भी इच्छा से जाए, लेकिन हम अपनी इच्छा व्यक्त करने से पहले हमें भगवान से या गुरु से उनकी स्तुति करनी चाहिए, उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसे में किसी के जाते अपनी बात सामने रख दो, पहले भगवान को प्रशंसा करके भगवान को उनको प्रसन्न करना चाहिए, उसके बाद अपनी बात रखनी चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है कि जब हम स्तुति करते हैं भगवान की, तो अच्छा होगा कि हम जो प्रमाणिक स्तुतियां हैं, जो जो प्रमाणिक स्तुतियां हैं भगवान की, जो भक्तों ने, जो भी भक्तों ने किया, प्रहलाद महाराज, गुरु महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, श्री प्रभुपाद, इन सब भक्तों ने, नरोत्तम दास ठाकुर, इन्होंने भगवान की अनेक स्तुतियां गाई हैं। सो अच्छा ये होगा कि हम भगवान की जो इन स्तुतियां हैं, इन्हीं को हम भगवान के सामने हम इनका वर्णन करें। क्यों क्यों हम अपने मन से बनाकर कोई स्तुति हम भगवान की क्यों ना करें? इसके दो कारण हैं। इसका पहला कारण यह है कि जब हम भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, श्री प्रभुपाद, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज इत्यादि महान जो भक्त हैं, जो उन्होंने स्तुतियां भगवान की हैं, जब हम उनको दोहराएंगे तो भगवान को वो स्तुतियां तो अच्छी लगेगी, लेकिन साथ में भगवान को अपना भक्तों का स्मरण भी होगा। तो हम भगवान की सहायता कर रहे हैं भगवान को अपने भक्तों का स्मरण करने के लिए। तो जब भगवान को अपने भक्तों का स्मरण होगा तो भगवान बहुत ही प्रसन्न होंगे। और क्योंकि हमने सहायता की भगवान को उनके भक्तों का स्मरण करने में, तो भगवान हम पर विशेष कृपा दृष्टि रखेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्यों हम अपने मन से स्तुति हमें नहीं करनी चाहिए? उसका कारण यह है कि अभी हमारी दृष्टि जो है वो भी भोग दृष्टि है। हम कोई भी वस्तु को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे नाम कैसे हैं। हम भगवान के सामने भी जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भगवान से हम क्या सेवा ले सकते। तो हम बहुत ही सोच समझ कर कुछ बहुत ही बढ़िया हम प्रार्थना करेंगे तो हो सकता है कि वो हमारी भोग दृष्टि से दूषित हो। तो भोग दृष्टि से दूषित होने के कारण भगवान को अच्छे नहीं लगेंगे। तो वो खतरा मोल लेने से अच्छा है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जैसे शिष्य हैं, वो भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, तो उन्हीं प्रार्थना को हम दोहराएं तो हम सुरक्षित रहेंगे और भगवान को अच्छे से प्रसन्न कर पाएंगे। इस श्लोक पर जाने से पहले मैं एक और प्रश्न उठाना चाहता हूँ कि आखिर शिव जी ने भगवान के मोहिनी रूप को देखने की इच्छा उनके मन में आई क्या? आगे ऐसा क्या है कि शिव जी भगवान के मोहिनी रूप के दर्शन करने के लिए, जो कि भगवान का एक्स्ट्रा बहुत ही रूप है, शिव जी उसी रूप के दर्शन के लिए लाभायित होंगे, ऐसा क्या? इसमें क्या कारण है कि स्पेशली चल के पार्वती और अपने सभी ग्रहों के सामने भगवान को प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान अपना मोहनी रूप दिखाएं। और हम देखेंगे जब भगवान ने मोहनी रूप दिखाया तो शिव जी अपने पर संयम नहीं रख पाए। तो शिव जी हम लोगों के लिए, हम सभी आप सबके लिए, हमारे लिए शिव जी ने भगवान से प्रार्थना की। इस प्रार्थना के द्वारा और स्वयं को परास्त होने के द्वारा शिव जी ये बताना चाहते हैं कि हमें माया को टेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम अभी बहुत अच्छे भक्त हैं, माया हमारा क्या बिगाड़ देती है। हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए, हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम बहुत ही क्षुद्र जीव हैं, हमारा मन भोग वासनाओं से भरा हुआ है, किसी भी क्षण हमारा पतन हो सकता है। ये फोन को प्लीज स्विच ऑफ कर दिया है। हमारा जो मन है वो भोग वासनाओं और अन्य अनेक दूषित विचारों से भरा हुआ है, कभी भी हमारा पतन हो सकता है। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि जैसे गांव में जो स्त्री रह रही है वो अपने सिर पर एक के ऊपर एक घड़ा रखकर लेके जाती थी पानी भरने के लिए। हो सकता है आजकल भी कई गांव में प्रचलित हो। सो बहुत ही एक्सपर्ट होती थी, लेकिन फिर उनका पूरा ध्यान मटकों में रहता था कि कहीं देखा जाए। इसी प्रकार एक भक्त को बहुत ही विनम्र रहना चाहिए और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं कहीं मेरा पता नहीं हो जाए। बहुत ही मुश्किल से सुदुर्लभ मानव देह दुर्लभ है, उसमें भक्तों का संत दुर्लभ है, और उसके अंदर भी चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में आगे वो और भी अधिक दुर्लभ है। और इतने दुर्लभ संत प्राप्त करने के बाद कहीं उससे ऐसी कुछ घटना या ऐसा कुछ कार्य नहीं हो जाए जिससे कि मैं मुझसे भक्तों का संग छूट जाए। हमें माया को टेस्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और भगवान भी हमें सावधान कर रहे हैं, मैं माया दुर्लभेगा, मेरी जो माया है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब हम सोच नहीं सकते, बहुत ही ज्यादा कठिन है माया से बाहर आना। इस श्लोक की हम बात करें तो हम इस श्लोक में सिर्फ जो प्रभुपाद ने आखिर की जो एक पंक्ति है जो प्रभुपाद ने समाप्त किया, इसको समराइज किया पूरे श्लोक को, कि भगवान से पृथक किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सो इस श्लोक के द्वारा शिव जी पहले तो मायावादियों के इस बात का खंडन कर रहे हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। तो यहाँ पर वो बात कह रहे हैं कि उन्होंने खंडन कर दिया मायावादी सिद्धांत। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि देखो भगवान से पृथक किसी भी वस्तु का कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो इन भक्त के लिए इसका क्या अर्थ है, हम इसके ऊपर थोड़ा एक भक्त के लिए इसका अर्थ है कि आप जिस भी परिस्थिति में हो वो परिस्थिति भगवान ने विशेष रूप से आपके लिए बनाई है। तो जिस भी परिस्थिति में हमें भगवान का बहुत धन्यवाद करना चाहिए, भगवान के कृतज्ञ रहना चाहिए। अगर हमें इन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो हमें सोचना चाहिए कि भगवान ने विशेष रूप से ये परीक्षा हमारे सामने रखी ताकि हमारा शुद्धिकरण हो सके। हमें कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, है ना, हमें अपने सह भक्तों के सामने या गुरु के सामने या भगवान के सामने ये कभी नहीं सोचना है कि हे भगवान ये क्या कर दिया हमारे साथ। कई बार ऐसा होता है कि आप सही होते हो, कुछ ऐसी बात हो जाती है कि आपने बहुत अच्छे से सेवा की, लेकिन फिर भी आपको दूसरे भक्तों से कुछ ना कुछ लहना सुनने के लिए मिल जाता है, तो उसमें कुछ भी चिंता की बात नहीं है, अच्छी बात है। हमें डरना चाहिए, प्रशंसा है। उलाहना सुन के किसी का दिमाग खराब नहीं होता, दिमाग घूमता है प्रशंसा से। अगर कोई बार बार हमारी प्रशंसा करेगा तो हो सकता है हमारे दिमाग में गलत विचार है कि शायद मैं वाकई में अच्छा हूं, है ना। लेकिन अगर जो भक्त है, अगर जो आपके साथ रहने वाले भक्त हैं या गुरु हैं, अगर आपको डांट से, अगर आपको समझाएं कि आप ये काम सही से नहीं कर रहे और अच्छे से कर सकते हो, तो हमें बहुत खुश होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए, देखो मैंने इतनी मेहनत की, इतना टाइम लगाया, 3 दिन से सोया नहीं, फिर भी ये सुनने को मिलेगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और इसके हमें अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसे हमें उदाहरण मिलता है। और कई बार क्या होता है कि जैसे गुरु आ जाए तो बहुत सारे लोग जो मंदिर में कभी दिखते नहीं है वो भी दिखाई देना शुरू हो जाते हैं और सबसे आगे आगे रहते हैं, और महाराज भी जो है, जो गुरु है, वो उनके सिर पे हाथ फेरते हैं। और आप सब लोग जो रोज मंदिर आ रहे हो, सुबह से शाम तक पूरे मंदिर की व्यवस्था चला रहे हो, उनकी तरफ देखते हैं नहीं, तो हम सोचते हैं देखो महाराज ने उसको तो देखो उसके सिर पे हाथ फेर दिया, मेरी बारी कब आई, महाराज कब मेरे सिर पर भी हाथ फेर दिया। लेकिन अगर चैतन्य चैतन्य में पड़े तो हमें पता चलेगा कि अगर हम महाराज की डांट अगर सुन पाए, अगर हम गुरु की डांट सुन पाए, तो हम ज्यादा भाग्यशाली हैं बजाय कि सिर पर हाथ फेरने के। सो ये हम कैसे जान सकते हैं कि जब मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि रूपा गोस्वामी थे या सनातन गोस्वामी थे, वो जगन्नाथपुरी में रह रहे थे और भगवान उनको बार बार सनातन गोस्वामी थे, सो भगवान बार बार उनको बहुत सम्मान दे रहे थे, तो सनातन गोस्वामी सोच रही थी कि मैं वापिस चला जाऊँ, तो उन्होंने जगन्नाथ पंडित से सलाह कि मुझे मैं क्या करूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं महाप्रभु की सेवा के लिए आया था लेकिन महाप्रभु मुझे अलिंगन कर दिए, मेरे शरीर की सारी जो पस मवाद है वो भगवान के शरीर पर लग जाता है, तो भगवान की सेवा करने आया था लेकिन उल्टा हो गया था, तो जगन्नाथ पंडित ने कहा आप वापिस वृंदावन चले जाओ। तो एक बार सनातन गोस्वामी ने ये भी सोचा कि शिकायत कर देते, तो जब चैतन्य महापुरुष से मिले तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि मैं वापिस वृंदावन जाना चाहता हूँ, और जगन्नाथ पंडित जो है उनका भी यही सुझाव। तो चैतन्य महापुरुष ने कहा वो बेवकूफ जग्गा, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम परम वैष्णव जो कि उससे वरिष्ठ हो उसको सुझाव दे सकते, उसका दिमाग खराब हो गया। सो सनातन गोस्वामी क्या ये सुनकर बहुत खुश हुए कि जग्गे को डांट दिया और मुझे परम वैष्णव बोला। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि कब ऐसा समय आएगा जब आप जैसे जगन्नाथ पंडित को डांट रहे हो आप मुझे भी डांट लो, क्या कहना चाह रहे हो, कुछ कहना चाह रहे हो, अच्छा नहीं अगर कुछ गलती हो गया तो मुझे बताइए, वो सुधार लूंगा। सो सनातन गोस्वामी ने कहा कि इस घटना से ये पता चल रहा है कि जगन्नाथ पंडित आपके कितने अंतरंग हैं और मुझे आप अभी भी भारी व्यक्ति मान रहे हो, इसलिए तो आप मुझे उछाल रहे हो। अगर आप मुझे अपना जन मानते तो मुझे डांट कर आप बोलते थे कि आप बेवकूफ वाली बात सोचते हैं। हम अद्वैताचार्य को देख सकते हैं, हम अद्वैताचार्य बहुत ही अच्छा लगता था, उनको अच्छा नहीं लगता था। अब अग्रचार्य ने कहा कि इस कठिन परिस्थिति से कैसे बाहर निकलूं, कैसे मैं चैतन्य महाप्रभु को यह संदेश पहुंचाऊं कि वो मेरे दास नहीं है, मैं उनका दास। तो उन्होंने कुछ सोचा अपने मन में और वो वहां से शांतिपुर चले गए। और शांतिपुर जाके अद्वैताचार्य जी ने मायावाद सिद्धांत का प्रचार करना शुरू कर दिया। जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला तो बहुत ही गुस्से में आ गए और नित्यानंद प्रभु के साथ गंगा नदी में कूदे और तैर के नवद्वीप से जो है शांतिपुर पहुंच गए। और वहां पर अद्वैताचार्य बैठे थे व्यास आश्रम के सामने, लोग बैठे थे। तो अद्वैताचार्य ने दूर से देखा चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं, तो जोर जोर से मायावाद का प्रचार शुरू कर दिया। सो चैतन्य महाप्रभु गए और अद्वैताचार्य को खींच कर व्यास आश्रम से नीचे गिरा दिया और उनको अपने हाथों और पैरों से मारना शुरू कर दिया। सीता ठाकुरानी ने बोला, नहीं नहीं आप प्लीज इनको मत मारिए, बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, मर जाएंगे, महाप्रभु नहीं होंगे। और अद्वैताचार्य कह रहे हैं हाँ अब अच्छा है, अब आपने मुझे अपने दास के रूप में स्वीकार कर लिया। सो कोई भी परिस्थिति है, किसी भी परिस्थिति को, किसी भी विपत्ति को, किसी भी आपदा को हमें ये सोचकर स्वीकार करना चाहिए कि ऐसा नहीं कि भगवान हमारे प्रति उपेक्षित है, भगवान हमें देख नहीं रहे, हमारे साथ क्या हो रहा है भगवान को शायद नहीं पता। भगवान को सब पता है, क्यों? क्योंकि भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसी कोई स्थान नहीं है जहां पर भगवान स्वयं उपस्थित नहीं हो। सो हमें हर परिस्थिति को भगवान की कृपा समझकर स्वीकार करना चाहिए और हर परिस्थिति में और कुछ विपदा आ गई है तो सोचना चाहिए कि मेरे अपने कर्म ढूंढान एक आत्मकृतम विपाकम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भागवत के दसवें स्कंध के चौथे अध्याय के आठवें श्लोक में है भगवान कह रहे हैं ढूंढान एक आत्मकृतम विपाकम, मेरे विपाक मेरे पूरे कर्म से जिसका मैं फल भुगतता हूँ किसी को और क्या दोष है। अवंती ब्राह्मण, आप सब अवंती ब्राह्मण के बारे में जानते हैं जो बुढ़ापे में भगवान ने उसका सब कुछ छीन लिया। तो पहले बहुत रोया लेकिन बाद में जब भगवत प्रेरणा से उसको समझ में आ गया कि यह भगवान की विशेष कृपा है तो उसे भगवान का बहुत धन्यवाद दिया। और आप देखेंगे अवंती ब्राह्मण हालांकि वैष्णव बन गया था लेकिन लोग उसको भोगी समझ रहे थे, लोग उसको वही समझ रहे थे कि इतना कंजूस मक्खी चूस व्यक्ति, इसने कभी इसके पास इतना सारा धन था लेकिन इसने कभी भी हमारी सहायता नहीं की, तो अब बदला लेने का समय। सो अवंती ब्राह्मण भिक्षा मांगने जाता था तो उसके गले में रस्सी बांध के कुत्ते की तरह अपने ब्रेड पे बांध लेते और घंटों बांधे रखते थे। उसके जो भिक्षा पात्र था कमंडलू उसमें से खाना खाने रहता था, उसमें मलमूत्र डाल देते थे। उसके सिर पर जो है गंदी हवा छोड़ते थे, उसको गंदी गंदी गालियां देते थे। लेकिन अवंती ब्राह्मण ने समझ चुका था कि ये सारी परिस्थितियां मेरे प्रतिकूल नहीं है, प्रतिकूल वो परिस्थिति होगी कि मैं भगवान को भूल जाऊं, भगवान की विस्मृति हो जाए। प्रतिकूल स्थिति वह है जिसमें भगवान को हम भूल जाए, प्रतिकूल स्थिति वह नहीं है जिसमें हम कष्ट पाए और उन कष्टों से हमें मदद मिले भगवान को याद करने के लिए, है ना। तो प्रतिकूल परिस्थिति को अगर कुछ भी समस्या आए आप सही हैं तब भी ये कहने में कि हाँ मैं गलत हूँ क्या दिस जाएगा हमारा, नहीं। श्रीवास पंडित परम वैष्णव है, उनके घर के बाहर गोपाल शकल ने दुर्गा पूजा की काली पूजा की सामग्री रख दी है ना, ताकि लोगों को ये लगे शराब लाल चंदन इत्यादि अनेक प्रकार का सामान रख दिया। तो जब सुबह उठे श्रीवास ठाकुर बाहर आए, उन्होंने देखा काली पूजा का सामान रखा हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या उसको छुपाने का प्रयास किया, क्या उन्होंने लोगों को ये बोलने का प्रयास किया कि देखो ये मैंने नहीं किया, किसी और ने किया है। शिवास ठाकुर ने क्या किया, जाकर लोगों को इकट्ठा करके लाए कि देखो ये मेरी असलियत है, मैं काली का पुजारी हूं, ये वैष्णव होने का तो ढोंग कर रहा हूं। सो शिवास ठाकुर के इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि अगर हम सही भी हैं, अगर हमने सारा काम बहुत अच्छे से किया, अगर हमने बहुत अच्छे से सेवा की, फिर भी अगर कोई बोला कि आपने गलती की है, तो हमें तुरंत उसको बिना किसी शर्त के हमें स्वीकार करना चाहिए कि हाँ मैंने गलती की है ना। हमें तर्क में नहीं पड़ना चाहिए है ना, हमें ये सिद्ध करने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि मैं सही हूँ। रूपा गोस्वामी के पास दिग्विजय पंडित है, बोले कि शास्त्रार्थ करो नहीं तो लिखो कि आप मुझसे हार गए हो, तो रूपा गोस्वामी ने बोला कहा लिखना, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम अपने आप को जस्टिफाई करेंगे कि मैं तो सही था, ये जस्टिफाई करने के लिए टाइम वेस्ट होगा। हम जब तक ये बोलेंगे कि देखो मैंने सही किया, मैंने ये किया मैंने वो किया, परिस्थिति ऐसी थी, इस परिस्थिति के अनुसार मैंने ये कार्य किया, इतना टाइम वेस्ट होगा ये सब कहने में, उससे अच्छा है ये बोल दो कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैं शर्मिंदा हूँ और भगवान का भजन है ना। सो ये हमें याद रखना चाहिए कि भगवान से पृथक किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है, का मतलब है कि भगवान ने जो विशेष परिस्थिति हमारे लिए बनाई है तो भगवान से भिन्न नहीं है, हमें उसका स्वागत करना चाहिए और उस परिस्थिति में रहते हुए और अच्छे से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। इसको यही विराम देते हैं, अगर किसी का प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आप बहुत पुराने भक्त हो,
किसी को बाकी सेवा में लगाते हैं, इसलिए कार्य है मोबाइल में और भी
सक्षम है हमें फ्री पर करेंगे। हालांकि जो वैष्णव सदाचार ये है कि जो कनिष्ठ भक्त है उसको वरिष्ठ भक्त को सलाह ही देनी चाहिए। आप सलाह मत दो किसी को बेकार में जाके, हम कल को जाके बोले कि मंदिर अध्यक्ष है उसको बोले तुम भी ऐसे ही ऐसे करना चाहिए। आपकी सेवा है तो दीजिए, नहीं सेवा है तो नहीं दीजिए, ये आपका आचरण है। लेकिन कोई दूसरा भक्त अगर आपको फीडबैक दे रहा है तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि उससे छोटा है कि बड़ा है, इसकी बात सुनू कि नहीं सुनू। हर भक्त की बात सुन के उसको सोचना चाहिए कि इस फीडबैक को, इस आलोचना को मैं कैसे अपने